समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात। कहते हैं कुछ विचार ऐसे होते हैं जो किसी की जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं, इसीलिए सुबह की शुरुआत अच्छे विचारों के साथ ही करनी चाहिए, क्योंकि जब हम इन विचारों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि उनके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आज का विचार है, मुश्किल समय में धैर्य न छोड़ें वरना परेशानियां और अधिक बढ़ जाती हैं। तो इसके साथ ही आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज सवेरे के इस अंक के साथ मैं हूं फरहत नाज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रेनु कटारिया। नमस्कार रेनु।
नमस्कार एंड हेलो Farhat, and a very warm welcome to all our listeners tuned to Akashvani FM Gold on 100.1 megahertz and the Akashvani network. We bring you our daily news magazine program Aaj Savere, wherein we will share the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 2nd of July. So let's begin with the headlines, Farhat.
Ji Renu, sabse pehle shuruaat kar lete hain sansad se judi khabar se. संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर कल धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। लोकसभा में भाजपा के अनुराग सिंह ठाकुर ने पिछले 10 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने अर्थव्यवस्था में वृद्धि और लोगों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला गया है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं, अग्निवीर योजना, मणिपुर में अशांति, नोटबंदी, बढ़ती महंगाई और किसानों के मुद्दे उठाए। श्री गांधी ने अग्निवीर योजना पर कहा कि ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि शहीद अग्निवीर के परिवार को 1 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। श्री राहुल गांधी की विशेष समुदाय पर टिप्पणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपत्ति की। प्रधानमंत्री कहा कि समुदाय विशेष को हिंसक कहना बहुत गंभीर मामला है। गृहमंत्री ने आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए माफी की मांग की। बाद में राहुल गांधी ने सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान किसी विशेष समुदाय के विरुद्ध नहीं था, बल्कि उनका इशारा भाजपा की ओर था। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में विशेष समुदाय के खिलाफ बयान पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की। श्री वैष्णव ने कहा कि राहुल गांधी के बयान से लोग आहत हैं। श्री वैष्णव ने नई दिल्ली में संवाददाता को बताया कि विपक्ष के नेता का पद बहुत जिम्मेदारी का होता है। उन्होंने कहा कि श्री गांधी ने सदन में गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। श्री वैष्णव ने आरोप लगाया कि अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी ने झूठ बोला है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री गांधी के संसद में किए गए कई दावों को चुनौती दी है और लोकसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि श्री गांधी भ्रामक बयान देकर बच नहीं सकते।
The fifth batch of 6,537 pilgrims left Bhavati Nagar Yatri Nivas base camp in Jammu for the Kashmir Valley to perform pilgrimage to Amarnath Cave Shrine. The pilgrims left the base camp in a cavalcade of 261 early this morning. These included 5,091 men, 1,102 women, 19 children, 301 sadhus and 24 sadhvis. Of these, 2,106 pilgrims left for Baltal at 3:05 AM and 4,431 pilgrims for Pahalgam base camp at 3:50 AM. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan held a meeting with Assam Agriculture Minister Atul Bora in New Delhi yesterday with the aim of rapid progress of agriculture sector in the country. During the discussion, promoting soil health, increasing storage capacity, horticulture in Assam and many other topics related to agriculture and farmers' welfare were discussed. Mr. Chauhan said that the interest of farmers and agriculture sector is paramount and central government will continue to provide full support to Assam on organizing capacity building workshop and training.
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि 3 नए कानून देश में सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली का नेतृत्व करेंगे। श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में कहा कि नए कानून त्वरित न्याय और पीड़ितों के अधिकार सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के साथ अपराधों से निपटने की प्राथमिकता दी गई है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ नए प्रावधानों के साथ राजद्रोह कानून को भी समाप्त कर दिया है।
India maintained top spot as the leading source market for Sri Lanka's tourism sector. The data released by Sri Lanka Tourism Development Authority stated that so far in the first 6 months of the year, over 1,84,000 Indian tourists have visited Sri Lanka, with the arrival of over 1,13,000 tourists into the main island nation in June. The tourism sector is witnessing a huge surge of tourists as compared to last year. Of these, over 28,000 tourists were from India alone. Sri Lanka also welcomed the 1 millionth tourist this year on Saturday, as the total tourists coming to Sri Lanka reached 1.01 million in the year so far, which is an increase of 62% over last year's numbers in comparable period. Hungary has taken over the rotating presidency of the Council of the European Union, or EU, for 6 months, with its focus on enhancing EU competitiveness. Hungary's European Union Affairs Minister Janos Boka yesterday outlined the 7 top priorities during Hungary's presidency. These priorities include enhancing the EU competitiveness, reinforcing European defence policy, EU enlargement, stemming illegal migration, shaping the future of a cohesion policy, formulating a farmer-oriented EU agriculture policy, and addressing European demographic challenges. Mr. Boka said these priorities reflect the will of European voters, stressing that the recent European parliamentary elections sent a clear political message that Europe needs change. The minister stressed EU competitiveness and European security and defence policy in particular. He emphasised that the motto of Hungary's EU presidency is "Make Europe Great Again." Around 50 Palestinian prisoners arrested during the ongoing conflict between Israel and Palestine were released yesterday. Israeli sources said that the prisoners were released from various Israeli facilities, including the military detention camp of State Haman in the south, where many Palestinians arrested during the ongoing conflict were held. They said that the release was part of an effort to reduce the number of detainees in State Haman. The office of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu issued a statement saying that the prisoners' release followed an ongoing Supreme Court hearing in which human rights groups are challenging the harsh incarceration conditions.
सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए में मजबूत तंत्र विकसित करने के लिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से सुझाव और प्रतिक्रिया मांगी है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से परीक्षा प्रक्रिया में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की संरचना और कार्यप्रणाली पर सुझाव व विचार मांगे हैं. ये सुझाव 7 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं. खेलों की बात करें तो विंबलडन टेनिस में इटली के जानिक सुनर ने जर्मनी के यानिक हैम्पमैन को हराकर दूसरे दौर में जगह बना ली है. नॉर्वे के कैस्पर रूड भी दूसरे दौर में पहुंच गए हैं. उन्होंने पहले दौर में ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स बोल्ज को पराजित किया. वहीं कनाडा के डेनिस शापोवालोव भी दूसरे दौर में पहुंच गए हैं. भारत के सुमित नागल को पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा. सुमित को सर्बिया के मियोमिर केकमानोविक ने पराजित किया. वहीं बात की जाए अगर महिला सिंगल्स की तो अमरीका की कोको गाफ और ग्रीक की मारिया सक्कारी दूसरे दौर में पहुंच चुकी हैं. ने अमरीका की कैरोलिन डोलेहाइट को हराया. मारिया ने अमरीका की मैकेटोनी कैसलर को पराजित किया. विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप कल लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में आरंभ हुई.
एंड टॉकिंग अबाउट क्रिकेट फरहत
जी,
इंडियन मेंस क्रिकेट टीम इज ऑल सेट टू फेस जिम्बाब्वे इन अ 5 मैच T20 इंटरनेशनल सीरीज शेड्यूल्ड बिटवीन द 6th टू द 14th ऑफ दिस मंथ. ऑल द मैचेस विल बी प्लेड एट हरारे स्पोर्ट्स क्लब इन हरारे. Zimbabwe have announced their 17-member squad for the series. The most senior player of the team and experienced batsman Sikandar Raza will lead the young Zimbabwe team. On the other hand, India have already declared the 15-member squad against Zimbabwe. Shubman Gill will lead the Indian squad.
तो श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और अब रुख कर लेते हैं महानगरों का. तो रेनु क्या है आपके पास चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में?
यस, बिगनिंग विद चेन्नई फरहत. चेन्नई मेट्रो वाटर विल कंडक्ट अ बेसलाइन सर्वे अमंग अ रैंडम सैम्पल ऑफ 15,000 हाउस होल्ड अक्रॉस ऑल 15 जोन्स इन द सिटी. द सर्वे एम्स टू असेस द क्वालिटी ऑफ इट्स सर्विसेज. द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड टी जी विनय सेड दैट अ कंसल्टेंट हैज बीन अपॉइंटेड एंड द स्टाफ विल कंडक्ट द सर्वे ओवर 60 डेज इन दीज हाउस households. At the end of 60 days, a detailed report will be prepared and Metro Water will use the feedback to improve their services. Based on the survey results, the water agency will redistribute and increase water supply to areas in need. The survey results will be corroborated with other World Bank-funded projects such as metering, multi-storied and commercial water consumers and water demand management. Metering is expected to reduce non-revenue water. Currently, almost all consumers, both domestic and commercial, are billed a flat water in charge, irrespective of consumption. The Water Board estimates that they supply water to around 8.8 million residents. Metro Water has asked residents to be ready to share necessary details for the survey if consultants visit their households. And one more news from Chennai, Farhad.
Ji.
Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, Captain Srinivas Murthy, Central Ayurved Research Institute, signed a memorandum of understanding with the Commissionerate of Indian Medicine and Homeopathy, Arambakkam. The MOU paves way for a collaborative framework for testing service, imparting training and executing a collaborative research on research studies for the standardization and evaluation of toxicity studies and the preparation of selected higher order medicines. Moving on to Bengaluru, Karnataka Energy Minister K.J. George has announced a solar park in Madhugiri Taluk, the second after the one in Pavagada. The public sector enterprise Tiri Hydro Development Corporation India Limited will execute the project under Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Uttan Mahabhyan, that is PM Kusum in short. The PM Kusum initiative was launched by the central government to address farmers' energy needs and make agriculture more sustainable. The scheme can help farmers harness solar power to meet their energy needs, reduce dependency on traditional energy sources and contribute to environmental conservation. The Pavagada Solar Park is spread across 13,000 acres, generating around 2,050 megawatt power. And the last news that I have is from Hyderabad Metro. The Telangana government decided to entrust more responsibilities to the Disaster Management Department in the Greater Hyderabad limits. Chief Minister A. Revant Reddy has directed the officials to assign the responsibilities to the authorities accordingly in line with the state government decision on this. He held a high-level review meeting with State Municipal Administration, Hyderabad Municipal Development Authority and Musi Riverfront Development officials last night in Hyderabad. The Chief Minister directed the officials to increase the scope of the Disaster Management Department up to the Outer Ring Road. He suggested making necessary changes to extend the services of the Disaster Management Department to Greater Hyderabad Municipal Corporation, 27 municipalities, corporations and 33 gram panchayats. An official release later stated that henceforth it has been tentatively decided to name the department as Hyderabad Disaster Response and Assets Monitoring Protection, that is HYDRA. He said the HYDRA should be active to deal with all problems being faced by the people in the city. Aur ab aapki taraf chalte hain Farhat, let's have some news from Delhi, Mumbai and Kolkata.
Ji bilkul Renu, sabse pehle shuruaat kar lete hain Rajdhani Delhi se judi khabar se. Delhi police ne avaidh sharab ki aapurti karne wale ek vyakti ko Rajdhani ke Nazafgarh kshetr se kal giraftar kiya. Aaropi ke paas se avaidh sharab ke 3500 quarter aur aapurti mein istemal kiye jane wale ek vahan bhi zabt kiya gaya hai. Delhi police ke upayukt Ankit Singh ne bataya ki zabt ki gayi sharab keval Haryana mein bikri ke liye vaidh hai. Unhone bataya ki aaropi ke khilaf chori और दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत चार मामले पहले से दर्ज हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने राजधानी के किंग्सवे कैंप स्थित नई पुलिस लाइन में कल अपना वार्षिक समारोह कमिश्नरेट डे परेड मनाया। इस समारोह में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिल्ली की सुरक्षा करने वाले एक बल के रूप में दिल्ली पुलिस ने विभिन्न चुनौतियों के बीच सार्वजनिक व्यवस्था और सद्भाव बनाए रखने का अनुकरणीय काम किया है। जामिया मिलिया इस्लामिया में कल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है। तीन सप्ताह तक चलने वाले इस पाठ्यक्रम में छात्रों को एआई और एमएल के क्षेत्र में विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पाठ्यक्रम का संचालन कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग द्वारा किया जा रहा है। और अब रुख कर लेते हैं मुंबई का। तीसरा इंडोनेशिया और एनएफडीसी फिल्म महोत्सव कल मुंबई के राष्ट्रीय भारतीय सिनेमा संग्रहालय में शुरू हुआ। सिनेमा प्रेमियों के लिए ये 6 दिन का उत्सव 6 जुलाई तक चलेगा। यह महोत्सव सिनेमा के माध्यम से इंडोनेशिया और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी एक उत्सव है। कल पहले दिन इंडोनेशियाई फिल्म पार्टिकुलर प्रदर्शित की गई। महाराष्ट्र के नाशिक जिले में तोपखाना केंद्र में कुमार मंगलम तोपखाना संग्रहालय के रूप में पुनर्निर्मित तोपखाना संग्रहालय का कल उद्घाटन किया गया। यह कार्यक्रम पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल परमेश्वर प्रभाकर कुमार मंगलम की जयंती पर आयोजित किया गया। संग्रहालय के प्रमुख आकर्षणों में करगिल युद्ध पर एक 3D फिल्म दिखाई गई। यह फिल्म दर्शकों को ऊबड़ खाबड़ इलाकों में सशस्त्र बलों की चुनौतियों का अनुभव प्रदान कराती है। यह संग्रहालय नाशिक आने वाले पर्यटकों के लिए एक प्रमुख केंद्र है, जो तोपखाने के समृद्ध इतिहास और भारत की सैन्य विरासत में इसके महत्वपूर्ण योगदान को प्रदर्शित करता है। और अब आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल की ओर रुख कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने जूट का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। भारतीय जूट निगम के प्रबंध निदेशक अजय कुमार जौली ने कल जानकारी दी कि समर्थन मूल्य को बदलकर 5,335 रूपये क्विंटल कर दिया गया है। पिछले साल यह 5,005 रूपये था। श्री जौली ने बताया कि भारतीय जूट निगम पश्चिम बंगाल में अपने 110 स्थायी केंद्रों से जूट खरीदता है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अपना जूट सीधे भारतीय जूट निगम को बेचें। एक संवाददाता सम्मेलन में जूट आयुक्त श्री मलय चंदन चक्रवर्ती भी मौजूद रहे। सम्मेलन में पट मित्र नामक एक ऐप का भी शुभारंभ किया गया। किसान इस ऐप से जेसीआई के विभिन्न बिक्री केंद्रों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जूट खरीदती है। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के समाचार। और अब रुख कर लेते हैं महानगरों के मौसम का। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम की। तो आज सुबह राष्ट्रीय राजधानी में कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई है। शहर में दिन में तेज बारिश के साथ बादल छाये रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है। वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे, बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कोलकाता में भी आज बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
And Chennai is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 27 degrees Celsius and the maximum will be around 34 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 21 degrees Celsius and the maximum will be around 28 degrees. And Hyderabad is expected to have generally cloudy sky. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 33 degrees Celsius.
और श्रोताओं, आज है 2 जुलाई 2024। तो आइए इतिहास की कुछ बातों को भी याद कर लेते हैं। आज ही के दिन सन 2006 में इंग्लैंड फुटबॉल टीम के कप्तान डेविड बेकहम ने अपना पद छोड़ा था।
एंड ऑन दिस डे इन 1997 स्क्रीनिंग फॉर हेपेटाइटिस सी वॉज मेड मैंडेटरी ऑल ओवर इंडिया। एंड इन द सेम ईयर ऑन दिस डे द साइंस फिक्शन कॉमेडी मूवी मेन इन ब्लैक स्टारिंग विल स्मिथ एंड टॉमी ली जोन्स ओपन्ड इन थिएटर्स अराउंड द यूनाइटेड स्टेट्स।
सन 2002 में आज ही के दिन स्टीव फोसेट गुब्बारे के जरिए दुनिया का भ्रमण करने वाले पहले व्यक्ति बने थे।
In 1998, India and Sri Lanka signed an agreement on promoting agricultural research in New Delhi on this day.
1983 में आज ही के दिन स्वदेश निर्मित परमाणु बिजली केंद्र की पहली इकाई ने मद्रास के पास कलपक्कम में काम करना शुरू किया था।
And in 2008, the 127-year-old Chhatrapati Shivaji Terminus, formerly known as the Victoria Terminus, was included in the UNESCO's World Heritage List on 2nd of July.
1962 में आज ही के दिन पहला वॉलमार्ट स्टोर कारोबार के लिए रोजर अक्सॉस में खोला गया। 1916 में आज ही के दिन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। और बात की जाए 1897 की, तो आज ही के दिन वैज्ञानिक मार्कोनी ने लंदन में रेडियो का पेटेंट कराया था। तो ये तो थी बात इतिहास की। और अब आइए याद कर लेते हैं कुछ मशहूर हस्तियों को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध पार्श्व गायकों में से एक, जिन्होंने बंगाली, उड़िया और हिंदी फिल्मों में गाने गाए। जी हां, हम बात कर रहे हैं सैयद मोहम्मद अजीज की। इन्होंने कोलकाता के गालिब रेस्टोरेंट में गायक के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। उनकी पहली हिंदी फिल्म अंबर थी, जो 1984 में रिलीज हुई। तो आइए सुन लेते हैं उन्हीं की फिल्म खुदगर्ज मूवी से ये खूबसूरत सा गीत।
आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ
मोहम्मद अजीज ने पहली बार अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द के लिए गीत गाया था। उन्हें 80 और 90 के समय में मोहम्मद रफी का उत्तराधिकारी कहा जाता था। मोहम्मद अजीज ने अलग अलग भाषाओं में 20,000 से अधिक गाने गाए। तो उन्हीं की फिल्म है 1992 में आई याद रखेगी दुनिया का ये खूबसूरत सा गीत, आइए सुन लेते हैं।
तुझे रब ने बनाया किस लिए, किस लिए?
मोहम्मद अजीज ने लता मंगेशकर, आशा भोसले, कविता कृष्णमूर्ति जैसी मशहूर गायिकाओं के साथ युगल गीतों में भी अपनी आवाज दी। और एक फिल्म है खुदा गवाह तू मुझे कबूल, तो आइए सुन लेते हैं ये भी गीत।
Today we are also paying tributes to Ernest Miller Hemingway, who was an American novelist, short story writer and journalist, best known for an economical, understated style that significantly influenced later 20th century writers. He is often romanticized for his adventurous lifestyle and outspoken and blunt public image. Most of Hemingway's works were published between the mid-1920s and mid-1950s, including 7 novels, 6 short story collections and 2 non-fiction works. His writings have become classics of American literature. He was awarded the 1954 Nobel Prize in Literature, while 3 of his novels, 4 short story collections and 3 non-fiction works were published posthumously. This is now, I'm going to talk about a list of work that Ernest Hemingway published during his lifetime, Farhad.
Ji.
2 Big Hearted River, 1925, The Sun Also Rises, 1926, A Farewell to Arms, 1929, For Whom the Bell Tolls, 1950, and The Old Man and the Sea, 1952. और हमें याद है जब हम English literature कर रहे थे graduation में, तो इसमें से काफी सारी novels हमारे course में थी. So a very good writer. And also Mario Francis Puzo, who was an American author and screenwriter. He wrote novel, crime novels about the Italian American mafia and Sicilian mafia, most notably The Godfather, 1969, which he later co-adapted into a film trilogy directed by Francis Ford Coppola. So yahan pe kyun na hum is movie ka theme song sun lete hain, Godfather, for which he received the Academy Award for Best Adapted Screenplay for the first film in 1972 and for part 2 in 1974. And Puzo also wrote the original screenplay for the 1978 Superman film and its 1980 sequel. So yahan pe bhi thoda sa sun lete hain Superman ka theme song. Hey, His final novel, The Family, was released posthumously in 2001. And screenplays mein agar hum baat karte hain, toh, as I've already spoken, The Godfather in 1972, Earthquake 1974, August for 1972, the script draft only. Godfather Part 2, 1974, Superman 1978, Superman 2, 1980, aur bahut sare, but ended in The Godfather Coda, The Death of Michael Corleone in 2020.
और श्रोताओं, आइए अब हम याद कर रहे हैं मराठी और हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक आशालता वाबगांवकर को। उन्होंने कई फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से बड़े पर्दे पर अमीर छाप छोड़ी थी। दूरदर्शन पर इन्होंने अपना कई सीरियलों से घर घर पहचान बनाई। इन्हें मूल रूप से आशालता के नाम से जाना जाता था। आशालता वाबगांवकर गोवा की रहने वाली थी। उन्होंने सबसे पहले कोंकणी और मराठी नाटकों में अभिनय करना शुरू किया। आशालता ने कई शानदार हिन्दी फिल्में भी की। उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म जंजीर थी। वहीं आशालता को बॉलीवुड में असली पहचान बासु चटर्जी की फिल्म अपने पराये से मिली। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर का ये सह कलाकार पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो आइए सुन लेते हैं 1986 में आई फिल्म अंकुश से ये खूबसूरत सब भक्ति संगीत, जिसमें उन्होंने अभिनय किया इतनी शक्ति हमें देना दाता। और श्रोताओं, आज जन्मदिन है प्रसिद्ध हिंदी जनकवि आलोक धनवा का। आलोक धनवा हिंदी के उन बड़े कवियों में से एक थे जिन्होंने 70 के दशक में कविता को एक नई पहचान दी। उनकी गोली दागो पोस्टर, जनता का आदमी, कपड़े के जूते और ब्रूनो की बेटियां जैसी कविताएं बहुचर्चित रहीं। दुनिया रोज बनती है उनका बहुचर्चित कविता संग्रह रहा। इनकी कविताओं के अंग्रेजी और रूसी भाषा में अनुवाद भी हुए हैं। तो एक उनकी एक बहुत ही अच्छी सी कविता है रेणु, जो मुझे बहुत पसंद है। आसमान जैसी हवाएं समुद्र, तुम्हारी किनारे शरद के हैं और तुम स्वयं समुद्र, सूर्य नमक के हो तुम्हारी आवाज, आंदोलन और गहराई की है और हवाएं जो कई देशों को पार करती हुई तुम्हारे भीतर पहुंचती हैं, आसमान जैसी हैं। तुम्हें पार करने की इच्छा अक्सर नहीं होती, भटक जाने का डर बना रहता है।
वेरी डीप। थैंक यू फरहत फॉर दैट। And also Pawan Malhotra, jinka aaj birthday hai, who is an Indian actor who works in Hindi films and television alongside Punjabi and few Telugu films. He has received several awards, including a Filmfare OTT Award and a Filmfare Award South. He has played lead roles in Buddhadev Das Gupta's National Film Award winning Bagh Bahadur and Syed Akhtar Mirza's सलीम लंगड़े पे मथ्रो, बोथ रिलीज्ड इन 1989। और ये बहुत फेमस रहे हैं एक तेलुगु मूवी ऐथे के लिए, जिसमें उन्होंने एक डॉन इरफान खान का रोल किया था। एंड इज ऑल्सो एक्लेम्ड रोल ऑफ टाइगर मेमोन इन ब्लैक फ्राइडे इन 2004। And over the years, he has worked with directors like Buddhadev Das Gupta, Syed Akhtar Mirza, Shyam Benegal, Deepa Mehta, and Roland Joffe. Aur inhein National Award mila hai for the movie Fakir in 1998, and Filmfare Best Villain Award Telugu Aise 2003, and 2022 mein Filmfare OTT Awards for Tabbar. So yahan pe ek gana hum sun lete hain, jo inke upar filmaya gaya hai. And also Margot Elsie Robbie, who is an Australian actress and producer. It's her birthday today. Her work includes both blockbuster and independent films, and her accolades include nominations for 3 Academy Awards, 6 BAFTA Awards, and 4 Golden Globe Awards. Time named her one of the 100 most influential people in the world in 2017, and Forbes named her the world's highest paid actress in 2023.
और इसके साथ ही वक्त चला है आपसे अनुमति लेने का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.newsonair.nic.in पर।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग एंड हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।